धवला पुस्तक 14 लेक्चर नंबर 16 ओ नमः सिद्धेभ्य ओ नमः सिद्धेभ्य ओ नमः सिद्धेभ्य ओ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसामूलं सिद्धे वियुत्थशैले अज्जत्थ बहित्थ बन्धनं मुखे वत्तिये अहं न म्यूं पुनो पुनो बंधनं वोच्छं।
आचार्य श्री वीरसेन स्वामी रचित यह धवला नामक टीका है, जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य। इसमें जो पांचवा खंड है उसका नाम है वर्गणा, और इस वर्गणा खंड जो 14वीं पुस्तक है उसके हम पृष्ठ संख्या 137 पर आ गए, 137। देखो, हमने वो 53 पेज पर शायद वो देखा था कि जो अनुयोग द्वार है 14, उनके नाम देखे थे। उसमें से वर्गणा प्ररूपणा में यानी एक प्रदेशी होती है, दो प्रदेशी होती है, वगैरह वगैरह सबके नाम बताए, यानी एक प्रदेशी, फिर संख्यात प्रदेशी, असंख्यात प्रदेशी, अनंतानंत प्रदेशी, फिर वो जीव के ग्रहण योग्य और ग्रहण नहीं योग्य इसे बताए। उसके बाद वो ध्रुव स्कंद वर्गणा बताए, उसके पश्चात सांतर निरंतर, उसके बाद शून्य वर्गणा, फिर प्रत्येक शरीर वर्गणा, फिर शून्य, फिर बादर निगोद वर्गणा, फिर शून्य वर्गणा, फिर सूक्ष्म निगोद वर्गणा, फिर शून्य वर्गणा, महास्कंद। ये तो उसमें पहले कौन कौन सी होती वो बात बताए। उसके बाद उसमें यही बात बताई उन्होंने, एक एक परमाणु से बढ़ते हुए सारे विकल्प कैसे घटित करना वो भी बात बताई उन्होंने। जघन्य कहाँ होती, उत्कृष्ट कहाँ होती, उसकी भी चर्चा की। वर्गणा के निरूपणा में यानी वो कैसी बनी है उसकी चर्चा है, भेद से होती है कि संघात से होती है कि भेद संघात से होती है, यानी जनरली क्या है, ऊपर के वर्गणाओं के भेद से, नीचे के संघात से, स्वस्थान में भेद संघात से। इसके लिए तीन वर्गणाओं के लिए ये बात नहीं लागू होती। कौन सी? जो सचित्त वर्गणाएं हैं, प्रत्येक शरीर वर्गणा, बादर निगोद वर्गणा और सूक्ष्म निगोद वर्गणा, क्योंकि वो वर्गणा यानी जीव और उसके साथ वो जो छह जो राशि है उसके समूह को यहाँ प्रत्येक शरीर वर्गणा कहा था, यानी वो टूटकर नीचे की वर्गणा हो जाए, या बादर निगोद वर्गणा में से स्कंद टूटकर इसमें प्रत्येक शरीर हो जाए, ऐसी बात नहीं होती। ये बात उन्होंने विस्तार से बताई थी। अब यहाँ जो वर्गणा ध्रुव है कि अध्रुव है उसकी बात अपनी चल रही है। तो ध्रुव स्कंद वर्गणा तक तो सारे ध्रुव ही वर्गणाएं होती है, यानी एक प्रदेशी हमेशा पाई जाएगी, दो प्रदेशी हमेशा होगी, तीन प्रदेशी हमेशा होगी, इस तरह से एक एक प्रदेश से बढ़ते हुए सारे ही हमेशा ही इस विश्व में पाए जाएंगे। फिर जो सांतर निरंतर वर्गणा इन जनरल सामान्य से कहे तो वो हमेशा है, परंतु जहाँ वो शून्य स्थान है कहीं अशून्य स्थान है, यानी कहीं निरंतर स्थान होते हैं, फिर गैप है, फिर निरंतर स्थान होते हैं, परंतु जहाँ गैप है वो कायम के लिए गैप नहीं है, यानी वो बदलते रहते हैं, शून्य से अशून्य, अशून्य से शून्य होते रहते हैं। इसलिए अकेले शून्य की बात करेंगे तो वो अध्रुव है, अकेले अशून्य की बात वो अध्रुव है, परंतु सामान्य से अगर लेके सातर निरंतर वर्गणा इट इज सेल्फ तो वह ध्रुव है, इस तरह से हमने देखे थे। उसके बाद यहाँ 137 पेज पर आए अभी, यानी यहाँ तक हमने पढ़ा था, अब इसके आगे की बात पढ़ेंगे। यह संभव की अपेक्षा कहाँ है? संभव की अपेक्षा देखो, ये शून्य अशून्य की बात होगी ना, उसके बाद हमने प्रत्येक शरीर वर्गणा की बात देखी थी। तो प्रत्येक शरीर वर्गणा जो है उसमें जघन्य कहाँ देखा था हम, अयोगी के अंतिम समय में जो क्षपित कर्मोशिक से आए हुए, और उसमें एक एक परमाणु बढ़ते हुए हमने सभी वर्गणाएं देखी थी, परंतु वो सभी वर्गणाएं तो कभी उपलब्ध ही नहीं होगी, क्योंकि हमने भेद कितने देखे थे, यानी स्थान जिसको कहेंगे, पॉसिबिलिटीज जिसको हम संभव है पॉसिबिलिटीज, तो जीव राशि से अनंत गुणे देखे थे, क्योंकि एक एक शरीर के विश्रोपचय ही जीव के अनंत गुण है, और वो हमने उनमें विश्रोपचय बढ़ाए, शरीर के परमाणु बढ़ाए, विश्रोपचय यानी छह पुंज बढ़ाए थे, तो ये विकल्प कितने, तो जीवों से अनंत अनंत गुणे होते हैं, और जीव कितने जाएंगे मोक्ष, तो सिद्ध जाने वाले वो अयोगी के अंतिम समय में आएंगे, वो तो जीव का अनंत वा भाग है, ख्याल में आए थे ना। तो कहते ये जो विकल्प जो है ना, ये जो पॉसिबिलिटीज बताए वो संभव की अपेक्षा बताए। ये पेज नंबर 136 का नीचे का पैराग्राफ जरा फिर पढ़ते देखो, देखो यहाँ कहते कि वर्गणा देश की अपेक्षा सब वर्गणाएं सर्वदा है इसलिए ध्रुव है। अब उसके ऊपर का दो लाइन पढ़ेंगे कि वर्गणा देश किसको कहते हैं, तो वर्गणाओं के संभव सामान्य को वर्गणा देश कहते हैं, पॉसिबिलिटी को कहते हैं वर्गणा देश, ये पॉसिबिलिटी की अपेक्षा ध्रुव है, परंतु जीवन से अनंत गुणे जीव कभी वो स्थान पर आने वाले ही नहीं है, इसलिए वो केवल संभव की अपेक्षा ही कहना है। अभी उसके बाद में पढ़ेंगे आगे, जो भव्यों के योग्य प्रत्येक शरीर वर्गणाए संयोगी और अयोगी जीवों के प्राप्त होती है। भव्यों के योग्य शब्द डाला है क्योंकि वो संयोगी अयोगी भी तक पहुंचने वाले भव्य ही है, वे शून्य रूप भी है और अशून्य रूप भी है, क्योंकि जो संभव जो हमने बताए थे वो सभी कभी भी फुलफिल होने वाले नहीं है। सब जीवों से अनंत गुणे संयोगी अयोगी प्रायोग्य, प्रायोग्य नहीं पॉसिबल, प्रत्येक शरीर वर्गणा स्थानों में से, स्थान जो हमने देखे थे एक एक विश्रोपचय परमाणु बढ़ा, एक एक शरीर का परमाणु बढ़ा, उनमें वर्तमान काल में एट ए टाइम में कितने हो सकते हैं, तो संख्यात जीव ही उपलब्ध होते हैं। यह कहना कि संख्यात जीव वर्तमान काल में सब जीवों से अनंत गुणे प्रत्येक शरीर वर्गणा स्थानों को भर देंगे ठीक नहीं है, यानी वो जो संख्यात जीव है उनके द्वारा ये सभी स्थान उपलब्ध नहीं होंगे, क्योंकि ऐसा होने में विरोध आता है। आप कहेंगे एक एक समय करते करते वो सभी स्थान फुल अप करेंगे, तो कहते ऐसा भी नहीं हो सकता। यहाँ जो वर्गणाएं शून्य है वे शून्य रूप से अध्रुव है, यानी अभी मान लेते ना चार जीव है, आठ जीव है, जो कितने हैं उस अंतिम समय में या वो सभी समयों में जितने कुछ अलग अलग हो सकते हैं, एट ए टाइम तो संख्यात ही होगी। तो कहते वो संख्यात है, उनके जो अभी वर्तमान में जितने परमाणुओं की संख्या है उसको वर्गणा कहेंगे हम, वो अशून्य है, और जो नहीं है वो शून्य कहेंगे, पर वो शून्य है वो पॉसिबिलिटी कभी हो सकती है, इसलिए क्या कहते कि जो वर्गणाएं शून्य है वे शून्य रूप से अध्रुव है, क्योंकि अभी जो नहीं है वो कभी हो सकती है, संभव पॉसिबिलिटी है ना कभी होने की, क्योंकि सर्वदा इस वर्गणा को शून्य रूप ही होनी चाहिए ऐसा कोई नियम नहीं है। कोई जीव किसी विशिष्ट परमाणु की प्रमाण के साथ वहां उपलब्ध हो सकता है कभी भी, यानी वो कायम वो होगी ही नहीं कभी, ऐसा नहीं कह सकते। और जो वर्गणाएं अशून्य रूप स्वरूप है, यानी जो वर्तमान में वो है उसमें, वे अशून्य रूप से अध्रुव है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है ना जब कोई अन्य पॉसिबिलिटी के साथ आएगा तो ये जो वर्तमान में उनके जो प्रमाण है वर्गणा का वो नहीं भी होगा, क्योंकि उन वर्गणाओं का एक रूप से अवस्थान नहीं रहता, यानी सभी जीवों में उतने के उतने परमाणु हो गए अंतिम समय में, ऐसी कोई बात नहीं है, ये उसका अर्थ है। अब यहाँ हम 137 से अपना आज का विषय शुरू होता है। देखो यह संभव की अपेक्षा कहा है, परंतु व्यक्ति की अपेक्षा, यानी व्यक्ति ने एक्चुअली प्रेजेंट की बात कथन करने पर संयोगी और अयोगी प्रायोग्य प्रत्येक शरीर वर्गणा स्थानों में से अनंत वर्गणाएं शून्य रूप से अवस्थित होनी चाहिए, कितने तो कभी भी, क्योंकि इतने अनंत अनंत जीवों से भी अनंत गुणे ऐसे स्थान है, तो ऐसे कोई स्थान हो सकते हैं कि जो कभी किसी जीव ने नहीं प्राप्त किए है, क्योंकि तीनों ही कालों में संयोगी और अयोगी जीवों के द्वारा नहीं छुए गए अनंत स्थान संभव है। ये समझ में आती है, क्योंकि तीनों काल के जीव कितने हुए तो आज तक के तो अनंत जो सिद्ध के सिद्ध की राशि, तो ऐसे कितने स्थान हो गए कि तो एक भी जीव ने उस स्थान को टच नहीं किया है। तथा अभवियों के योग्य जो प्रत्येक शरीर वर्गणाएं शून्य रूप है, वे शून्य रूप से अध्रुव है। अभी अभवियों के योग्य ने जो सहयोगी अयोगी को छोड़ो, बाकी जो प्रत्येक शरीर वर्गणाएं हैं तो उनमें भी सभी, उसमें भी अनंत स्थान हमने पॉसिबिलिटीज देखे थे, वो भी हमेशा कवर हो गया, इसी बात नहीं है। वे शून्य रूप से अध्रुव है क्योंकि शून्य रूप वर्गणाओं का भी उपरिम और अधस्थान वर्गणाओं के भेद संघात से बाद में अशून्य रूप से वो सद्भाव लिखो, अद्भाव नहीं सद्भाव पाया जाता है। ऊपर लिखा है पांचवी लाइन में असुन्नत्व लंभादो, क्या कहना चाहते हैं? जो अभी है ही नहीं है, शून्य रूप है ना, किसी जीव को वो पॉसिबिलिटी अभी नहीं, वर्तमान में नहीं है। ऐसी जो वर्गणाएं होगी तो कभी ना कभी कोई जीव उतने परमाणुओं के प्रमाण के साथ प्रत्येक शरीर वर्गणा में होगा, वो इसलिए वो कायम अशून्य रूप से नहीं होती है। जो शून्य है वो अशून्य होगी, अशून्य वो शून्य हो जाएगी। यह भी संभव की अपेक्षा कहा है, मिला? परंतु व्यक्ति की अपेक्षा देखने पर, व्यक्ति के ने जो अभी तक जो व्यक्त हो चुकी है, शून्य वर्गणाएं शून्य रूप से अवस्थित है क्योंकि पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, देव, नारकी, सहयोगी और अयोगी, इन असंख्यात लोक प्रमाण सब जीवों के द्वारा, कितने जीवों के द्वारा वो है तो असंख्यात लोक प्रमाण, अनंत गुणे प्रत्येक शरीर वर्गणा स्थानों का व्याप्त करना संभव नहीं है। यानी प्रत्येक शरीर वर्गणाओं का प्रमाण कितना, एक एक परमाणु से बढ़ते हुए जो स्थान हमने देखे थे वो
जीवराशि,
हाँ जीवराशि से अनंत अनंत गुणे होते हैं। इसलिए असंख्यात लोक प्रमाण जीवों के द्वारा इनको व्याप्त करना संभव नहीं है। अशून्य वर्गणाएं अशून्य रूप से अध्रुव है क्योंकि प्रत्येक शरीर वर्गणा द्रव्यों का वृद्धि और हानि के बिना सर्वदा अवस्थान नहीं पाया जाता। यानी जो प्रत्येक शरीर वर्गणा है उसमें परमाणु की अधिक भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, अलग अलग पॉसिबिलिटी हो सकती है। परंतु वर्गणा देश की अपेक्षा, वर्गणा देश ने इन जनरल कथन करने पर, सामान्य से कहने पर, सब प्रत्येक शरीर वर्गणाएं ध्रुव है क्योंकि सांतर निरंतर वर्गणाओं के समान सब प्रत्येक शरीर वर्गणा स्थानों का किसी भी काल में शून्यपना नहीं पाया जाता। यानी वो तो संभव की अपेक्षा हम कहेंगे उसको, सामान्य संभव की अपेक्षा कहेंगे वो ध्रुव है। हाँ ये जो गैप है वो कायम गैप नहीं रहते, गैप हाँ हमेशा वो इन जनरल अगर पूरी वर्गणा देखो तो कायम है, ध्रुव है। अभी ये प्रत्येक शरीर वर्गणा हो गई, अभी ध्रुव शून्य की बात नहीं करनी क्योंकि शून्य रूप ही है कायम। अभी यहाँ बादर निगोद वर्गणाएं, नीचे का पैराग्राफ, जो कि भव्यों के योग्य, वो शब्द बराबर करना पुरानी पुस्तक में, भव्यों के योग्य क्षीण कषाय गुणस्थान में उपलब्ध होती है, वे शून्य रूप होकर शून्य रूप से अध्रुव हैं। क्या कहना चाहते हैं? बादर निगोद वर्गणा का जगन्य कहाँ देखा था हमने? क्षीण कषाय के अंतिम समय में, उसमें कंडीशन क्षपित कर्मोशिक से आया था और शरीर की छोटी से छोटी अवगाहना थी। फिर हमने उसमें अनंत विकल्प देखे थे, कैसे
एक एक प्रदेश से बढ़ते
विश्र सब से बढ़ाए, औदारिक शरीर के परमाणु को बढ़ाते गए, फिर एक बादर निगोद जीव को बढ़ाया, इस तरह से हमने बहुत सारे विकल्प देखे थे। यानी क्षीण कषाय के अंतिम समय में ही कितने बादर निगोद बढ़ा सकते हम, तो पल्ले के असंख्यात विभाग करना जगन्य से उत्कृष्ट, इतने जीवों की बात है। फिर एक एक समय हम पीछे पीछे आए तो अनंत जून के डिफरेंस पड़ा उसमें। जैसे जो असंख्यात गुणा क्रम से हम नीचे तक आए, फिर वो संख्यात विभाग या असंख्यात विभाग अधिक वाली बात उन्होंने बताई, ऐसा ही वो मूली में अदरक में स्वयं रमण द्वीप के उसकी बात उन्होंने बताई थी। इस तरह से जघन्य से लेकर उत्कृष्ट तक सारे विकल्प उन्होंने बताए थे। अब उसी की बात कर रहे हैं कि बादर निगोद वर्गणाए, शून्य का अर्थ होता है, देखो अभी वर्तमान में वहां कितने जीव हो गए, वर्तमान में बारहवें के अंत में संख्यात हो गए, तो संख्यात हो गए तो एक समय में तो संख्यात ही हो गए ना, तो उनके तो स्थान चार पांच दस जो कुछ है वो और बाकी क्या है, अशून्य है, वर्धमान में अशून्य है। हमने विकल्प कितने देखे, जीव राशि से भी अनंत अनंत गुण, इतने एक एक परमाणु के डिफरेंस से वर्गणा के स्थान देखे थे। जो अभी जीवों के जो है उसको अशून्य कहेंगे और अभी जो नहीं है उसको हम शून्य कहेंगे। पर वो जो शून्य हो या अशून्य कायम के लिए वो उध्रुव नहीं है, क्योंकि अन्य काल में अन्य पॉसिबिलिटी हो जाती है। स्थान यानी क्या है, परमाणु के प्रमाण को स्थान कहा। हाँ, तो अलग अलग जीवों के अलग अलग स्थान हो गए। अभी वर्तमान में जो परमाणुओं की संख्या है, उनके बादर निगोद वर्गणा के परमाणुओं की संख्या, वो हर काल में उतनी ही रहेगी, ऐसी कोई बात नहीं है ना। अलग अलग जीव वहाँ आएंगे, उनके शरीर के वर्ग अवगहना अलग अलग होगी, या उनके एक एक परमाणु के डिफरेंस भी कितना पड़ता है। औदारिक शरीर का एक परमाणु का डिफरेंस होगा तो विश्वसोपचय अनंत में बढ़ जाएंगे एक साथ। यानी ये सारे अशून्य रूप शून्य रूप इस तरह से हमको कंसिडर करना है। देखो बादर, फिर पढ़ती हूँ इसको, बादर निगोद वर्गणाएं जो कि भव्यों के योग्य क्षीण कषाय गुणस्थान में उपलब्ध होती है, वे शून्य रूप होकर शून्य रूप से अध्रुव है। शून्य क्यों कहा, क्योंकि थोड़े ही जीव उसमें है, या अनादि से भी आज तक देखेंगे तो जो ऊपर चढ़कर मोक्ष चले गए हैं उनकी अपेक्षा भी देखेंगे तो कुछ ही स्थान उन्होंने एक्यूपाई किए हैं, बाकी सब अशून्य है। परंतु शून्य रूप से अध्रुव है क्योंकि कभी कोई जीव वो पर्टिकुलर प्रमाण के साथ वहां पाया जाएगा। शून्य वर्गणाओं का शून्य रूप से सदा अवस्थान नहीं पाया जाता, यह संभव की अपेक्षा का, संभव ने पॉसिबिलिटी। परंतु व्यक्ति की अपेक्षा कथन करने पर शून्य वर्गणाएं शून्य रूप से ध्रुव है, क्योंकि संख्यात क्षीण कषाय जीवों का सब जीवों से अनंत गुणे क्षीण कषाय प्रायोग्य बादर निगो स्थानों में तीनों ही कालों में वृत्ति मानने में विरोध आता है। क्या कहना चाहते हैं, किसी भी काल में वो तो संख्यात ही जीव क्षपक श्रेणी चढ़ेंगे और क्षीण कषाय में तो उतने ही जीव होंगे। तो कहते कि व्यक्ति की अपेक्षा है क्या, प्रकट होने की अपेक्षा, यानी जो संख्यात जीवों के द्वारा इतने स्थान सभी ऑक्यूपाई नहीं होंगे, क्योंकि टोटल स्थान कितने हैं, तो जीवों से अनंतानंत गुणे हैं। तथा पेज नंबर 138, शून्य वर्गणाएं शून्य रूप से अध्रुव भी है। देखो ध्रुव भी है कहते हैं, अध्रुव भी है, क्योंकि वो पर्टिकुलर पॉसिबिलिटी किसी काल में हो सकती है, क्योंकि कोई भी शून्य स्थान किसी भी समय अशून्य रूप होकर उपलब्ध होते हैं। समझ में आती है ना, अभी तक तो किसी ने वो स्थान नहीं पाया है तो वो अभी तक तो ध्रुव है, अशून्य है, सॉरी शून्य है, तो कभी किसी जीव को वो स्थान हो सकता है, तो जो शून्य था वो अध्रुव है। क्यों, किसी जीव को वो पॉसिबिलिटी है, वो प्राप्त हो सकता है। हाँ, शून्य ने विद्यमान, अशून्य और अशून्य ने विद्यमान, शून्य ने अभी किसी के है ही नहीं है, शून्य ने नहीं है। अब कहते हैं अशून्य वर्गणाएं, तीसरी लाइन, अशून्य रूप से अध्रुव है। अशून्य ने जो वर्तमान में उसकी उतनी संख्या वाला स्थान है किसी का, अशून्य ने है, शून्य ने नहीं है,
शून्य है
जो है वो हमेशा होगा ही ऐसा नहीं है, वो नहीं भी होगा, यानी अशून्य रूप से अध्रुव है। समझ में आती ना, ये तो शून्य अशून्य करने से वो जरा गड़बड़ी हो रहा है। अशून्य ने है, हा?
नहीं शून्य रूप
नहीं कर देखो कहाँ लिखा आपने कौन सी लाइन में था 136 में
हाँ
शंका के ऊपर देखो नहीं नहीं कहाँ पर आपकी कौन सी लाइन में आपने लिखा है
ऊपर
अशून्य रूप है
नहीं नहीं एक मिनट कहाँ लिखा हाँ देखो नीचे की वर्गणा है संघात से और ऊपर की वर्गणा है भेद से उस काल में शून्य वर्गणा को अशून्य रूप करती है शून्य वर्गणा नहीं है परंतु नहीं है तो वो हो जाती है
कभी कभी
आपने उसमें क्या लिखा है
अलग अलग विकल्प पाए
जाते हैं अलग
देखो देखो हमने क्या देखा अभी हाँ हाँ वही कहना है ना यानी शून्य रूप से हमेशा ही नहीं रहेगी यानी जो नहीं थी वो हो जाती है हाँ यानी उसमें क्या देखो विकल्प हमने पॉसिबिलिटीज कितने देखे थे अनंत अनंत देखे
जीवो थे अनंत
अभी जो है नहीं वो है रूप हो जाती है और जो है वो नहीं है रूप भी हो जाएंगे
शून्य रूप भी हो जाएगी
क्योंकि जो विकल्प है ना पॉसिबिलिटीज हमने अनंत देखे थे वो जो भी वर्तमान में नहीं है वो कभी किसी काल में हो भी सकते हैं और जो वर्तमान में है या अभी तक जो है रूप से थे वो कभी नहीं हो ऐसा भी हो सकता है अब आना पेज 138 पर तीसरी लाइन फिर पढ़ती हूँ मैं अशून्य वर्गणाएं अशून्य ने जो है वाली
वर्तमान में
है अशून्य रूप से अध्रुव है यानी हमेशा ही वो होगी ही ऐसा नहीं है क्योंकि क्षीण कषाय प्रायोग यानी क्षीण कषाय में जितना हो सकता है इसे बादर निगोद वर्गणाओं का सर्वदा अवस्था नहीं पाया जाता क्योंकि अलग अलग जीवों के अलग अलग पॉसिबिलिटीज यानी विकल्प हो सकते हैं
इसे भी क्षीण कषाय सर्वदा वर्गणा है ना तो कभी कभी सभी जीव सभी स्थान शून्य रूप से हो जाते हैं
नेचुरली हाँ यदि उनका अवस्थान होता है तो किसी भी जीव को मोक्ष नहीं हो सकता
ये नहीं समझ में यदि उनका अवस्थान
देखो देखो यहाँ क्या कहते हैं क्षीण कषाय प्रायोग्य बादर निगोद वर्गणाओं का सर्वदा अवस्थान नहीं पाया जाता सर्वदा ने हर समय उसका अवस्थान होगा क्या
नहीं
क्योंकि आप ही ने बताया कि क्षीण कषाय जो गुणस्थान वाले जीव है वो आगे चलकर अरिहंत होकर मोक्ष चले जाएंगे अगर सर्वदा अवस्थान मानेंगे तो वो जीव वो मोक्ष ही नहीं होगा वहीं पर रहना पड़ेगा यदि उनका अवस्थान होता है तो किसी भी जीव को मोक्ष नहीं हो सकता क्योंकि क्षीण कषाय में बादर निगोद वर्गणा के रहते हुए केवल ज्ञान की उत्पत्ति होने में विरोध है ये उनको क्या कहना है वो क्षीण कषाय वाले गुणस्थान वाले जीव वो जो बादर निगोद वर्गणा वाले हैं, वो प्रत्येक शरीर वर्गणा हो जाते हैं ना संयोगी में जाते हैं यानी बादर निगोद वर्गणा के वो कायम नहीं रहती है ये कहना चाहते हैं और ऐसे भी हमेशा कोई जीव क्षीण कषाय गुणस्थान में हो गया नाना जीव की अपेक्षा ये भी नहीं बन सकता क्योंकि हमने देखा 6 महीने का गैप भी हो सकता है यानी कोई भी क्षीण कषाय के योग्य वर्गणाएं न हो ये बन सकती है बात क्योंकि हमने ऐसा अन्य कोई जीव नहीं देखा कि इतने कम प्रमाण में उसके साथ होगा क्योंकि क्षीण कषाय के बाद नीचे उतरते उतरते फिर हमने वो अन्य जीवों की बात की थी बादर निगोद वर्गणा में अब अभवियों के योग्य जो शून्य वर्गणाएं हैं अभी अभवियों के योग्य भी जो एक एक परमाणु से बढ़ते हुए कितने सारे वर्गणा बताई अभवियों के योग्य ने वो अन्य सभी बादर निगोद के जो प्रतिष्ठित वाले हैं वो कोई भी जीव उसमें उसके साथ ले सकते हैं तो अभवियों के योग्य जो शून्य वर्गणाएं हैं वे शून्य रूप से अध्रुव है क्योंकि अभी तो शून्य है
पर कभी वो स्थान
परंतु उतने प्रमाण वाला कभी कोई जीव हो सकता है क्योंकि शून्य वर्गणाओं का भी उपरिम और अधस्तन वर्गणाओं के भेद संघात से कालांतर में अशून्यपना पाया जाता है, यह संभव की अपेक्षा कहाँ है? ये समझ में आई ना बात?
जीव, ये जीव की भी बात है और परमाणु की भी बात।
नहीं नहीं नहीं, जीव तो का तो है ही, वहाँ पर परमाणु की संख्या की अपेक्षा हमने स्थान घटित किए थे ना। देखो जब हम वर्गणा कहते हैं तो वर्गणा में परमाणु को ही लेना, पर ये सचित्त वर्गणा है तो उसके साथ वो जीव भी है वहाँ पर, क्योंकि प्रत्येक शरीर वर्गणा, बादर निगोद वर्गणा और सूक्ष्म निगोद वर्गणा ये सचित्त वर्गणा है और बाकी सारे अचित्त वर्गणा है। फिर से पढ़ती हूँ, अभव्यों के योग्य जो शून्य वर्गणाएं है वे शून्य रूप से अध्रुव है, क्योंकि शून्य वर्गणाओं का भी यानी जो अभी नहीं है उनका भी उपरिम और अधस्तन वर्गणाओं के भेद संघात से, उपरिम और अधस्तन वर्गणा यानी उप
बादर निगोद वर्गणा,
बादर निगोद वर्गणा की बात चल रही है।
हाँ,
उसके लिए उपरिम कौन सा?
जो एक पर्टिकुलर स्थान है उससे ऊपर वाला और
सूक्ष्म नहीं लेना ना, प्रत्येक नहीं, शून्य तो है ही नहीं ना, उसका भेद क्या होगा? बादर निगोद वर्गणा में जो अनेक भेद देखे थे हमने उसी में स्वस्थान में ही उपरिम नीचे देखो, स्वस्थान में ही उपरिम नीचे उसी में। हाँ, यानी उसमें भेद संगत कैसे, वो जीवों को भेद वगैरह नहीं लेना, उसमें उस जीव ने परमाणु अधिक लिए,
मिश्र
सोप से अधिक हो गए या उसके साथ इस तरह से। हाँ, छोड़े ने वो संग भेद से संघात से कैसे लेंगे?
साथ भेद करके और नीचे के स्थान
यानी उसने छोड़े छोड़े हुए परमाणु को लेना,
बादर निकोस वर्णा में ये करते।
हाँ, यानी ये जो नहीं नहीं उसकी अपेक्षा नहीं लगेंगे, समय प्रबंध ले या न ले उसकी टोटल नंबर ऑफ वो लगेगा ना, वो संघात में उनको ही लेना है। हाँ, और भेद में उसके कुछ पार्ट निकल गए ऐसा भी ले सकते हैं। अब ये उपरिम और अधस्तन वर्गणा जो लिखे वो स्वस्थान में लेना,
स्वस्थान बादर निगोद में लेना।
हाँ, यानी स्वस्थान की अपेक्षा नीचे ऊपर कहना उसको। तो कहते कि यह संभव की अपेक्षा का है, यानी ये कभी किसी काल में पॉसिबल है, परंतु व्यक्ति की अपेक्षा कथन करने पर शून्य वर्गणा ध्रुव भी है। ध्रुव भी क्यों कहा? ऐसी कोई शून्य वर्गणा यानी जो अभी तक तो नहीं है परंतु कुछ काल के लिए वो तो होगी भी नहीं, ऐसे भी पॉसिबिलिटी है ना, क्योंकि वो विकल्प इतने हैं, क्योंकि असंख्यात लोक प्रमाण मादर निगोद वर्गणाओं के, असंख्यात लोक प्रमाण बादर निगोद वर्गणा जब कहते हैं वो तो प्रतिष्ठित प्रत्येक की अपेक्षा लेना असंख्यात लोक प्रमाण। किसी के आधार से रह रहे हैं वो निगोद वर्गणा कितनी असंख्यात लोक प्रमाण है। अभी वो पुलवी की अपेक्षा या जो कुछ एक बंधन बद्ध को ले लिया है वहां पर
असंख्यात लोक शरीर की अपेक्षा लेना पड़ेगा।
देखो देखो असंख्यात लोक है ना यहाँ पर बादर निगोद वर्गणा, असंख्यात लोक प्रमाण लिए यहाँ पर,
ये असंख्यात लोक शरीर की अपेक्षा ले सकते हैं ना।
हम्म,
बादर निगोद वर्गणा
में
हम लोग जीव कौन से ले सकते हैं? अपा वनस्पति का एक मनुष्य और तिर्यक।
हाँ,
तिर्यक में भी ये केंद्रीय में ये पांच पेज तो निकाल देना है।
हाँ, एक मिनट, बादर निगोद वर्गणा है पर वो सब जीवों के से अनंत गुणे सेचीय स्थानों में यानी पॉसिबल संभव स्थानों में अतीत काल में भी वृत्ति होने में विरोध है। वो तो उनके स्थान असंख्यात लोक प्रमाण ही हो गए, वो अनंत विकल्प जो हमने देखे सेचीय स्थान यानी विकल्प जो पॉसिबिलिटीज ये उनके नहीं हो सकते, यानी असंख्यात लोक प्रमाण ही स्थान वो पाए जाएंगे।
बादर निगोद वर्गणा में हम लोग जो ये वनस्पति का एक लेते हैं वहाँ पे भी उनके स्थान
नहीं, 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 देखो देखो निगोद स्थान देखे उन्होंने।
हाँ, तो बादर निगोद में तो हम लोग को वनस्पति को
लेना इसमें ले लेना।
हाँ,
उनके कितने स्थान है वो वहाँ पर देखो, आपने जहाँ नंबर ऑफ स्थानों की बात देखी थी ना
को तो हम लोग को पीछे जाना।
नाना श्रेणी वर्गणा की बात है, 119 पेज होगा। हाँ वो इतने क्यों नहीं हो सकते, उसका खिलास
अनुष्ठान क्यों नहीं हो सकते।
टोटल बांदर निबोध वर्गना कितनी होते, वो उन्होंने जघन्य कितनी होते, उत्कृष्ट को उतने, अजघन्य अनुत्कृष्ट उन्होंने बताया था ना, असंख्यात लोक प्रमाण होती है। देखो सूक्ष्म निगोद की मिली मुझे, बादर निगोद की उसके पहले में होगी।
ये है ना 119 पेज पे ये बताया ना, स्वयं सबुद्र में वर्तमान काल में जगत तत्व के असंख्यात विभाग प्रवण महात्मा से दिखाई देते और उसके नीचे खुलासा दिया है।
सब में उत्कृष्ट नहीं होती है, उत्कृष्ट की बात है वो।
सॉरी टोटल टोटल स्थान कितने बताए थे?
देखो पेज नंबर 120 सेकंड लाइन, अजघन्य अनुत्कृष्ट। देखो जघन्य कितनी हो सकती है, उत्कृष्ट कितनी हो सकती है, तो अवलिकी असंख्यात विभाग में। पर बीच वाले जो विकल्प है ना, अजघन्य अनुत्कृष्ट बादर निगोद वर्गणाएं वर्तमान काल में एट ए टाइम कितनी हो सकती है, असंख्यात लोक प्रमाण उपलब्ध होती है ना। ये सारे जो अलग अलग स्थान देखे उसके, क्योंकि वहां अवलिकी असंख्यात विभाग प्रमाण जो हमने देखे थे वो क्षपित कर्मांशिक की अपेक्षा वगैरह वगैरह लिए थे। और वहां बादर निगोद कितने पाए जाते हैं, गुणित कर्मांशिक या क्षपित कर्मांशिक, उसकी बात थी। जघन्य और उत्कृष्ट, वो भी जघन्य अतुष्ट, वो भी असंख्यात लोक प्रमाण होती। हमने देखी ना उतने स्कंद होते हैं ना उसके, यहाँ पर भी स्कंदों की अपेक्षा ले लेना है। अभी अपने पेज पर आते हैं, ये जरा स्पष्टीकरण थोड़ा क्लिष्ट है। 138 पेज पर आते हैं, देखो खुलासा इस प्रकार है मिला, पहले पैराग्राफ में नीचे से पांचवी लाइन, एक अतीत समय में यदि असंख्यात लोक प्रमाण बादर निगोद स्थान पाए जाते हैं, यानी किसी भी समय कितने बादर निगोद स्थान कितने हो गए, असंख्यात लोक प्रमाण, क्योंकि असंख्यात लोक प्रमाण ही उसके जो स्थान बताएंगे, तो सब अतीत काल में कितने प्राप्त होंगे, अभी तक कितना अतीत काल बीत गया है, तो उससे गुणा करना उसको। इस प्रकार फल से गुणित इच्छा को प्रमाण से भाजित करने पर अतीत काल से असंख्यात लोग गुणे बादर निगोद वर्गणाओं में अशून्य स्थान प्राप्त होते हैं, यानी अभी तक किसी न किसी जीव ने वो स्थान प्राप्त किया था। ऐसे कितने स्थान हुए एक समय में असंख्यात लोक प्रमाण, क्योंकि अलग अलग समय में एक जीव के भी अलग अलग स्थान हो गए ना, परमाणु ग्रहण कितना है, छोड़ता है कितने, उसके अनुसार तो गया काल कितना है, तो अनंत काल बीत गया है, अभी तक अनंत काल बीत गया है, और उसको असंख्यात लोक से गुणा करेंगे। हाँ, तो इतना क्या होगा,
अशून्य स्थान प्राप्त हो जाएगा।
हाँ, इतने किसी न किसी जीव ने कभी न कभी प्राप्त किए थे,
अनंत गुणा असंख्यात लोक।
हाँ, अन्य सब स्थान शून्य ही है, और टोटल स्थान कितने देखे हमने,
जीवराशि से अनंत गुणा,
अनंत अनंत गुणा है ना,
छह पुंज में विश्व स्वप्न लेंगे तो जीवराशि से अनंत गुणा
ख्याल में आती है न। इसलिए शून्य वर्गणाएं शून्य रूप से ध्रुव है। अब यहाँ प्रश्न है, यानी कुछ शून्य वर्गणाएं शून्य रूप रहेगी ऐसा कहना चाहते हैं। शंका, विग्रह गति में विद्यमान बादर निगोद जीव, अब वो विग्रह गति में है, यानी वो वहां से छूटा है, और ये अभी विग्रह गति में है, वो उसकी निगोद पर्याय शुरू हो गई है, तो विग्रह गति में विद्यमान बादर निगोद जीव क्या बादर निगोद वर्गणाओं में गर्भित है या प्रत्येक शरीर वर्गणाओं में गर्भित है? प्रश्न समझ में आया? अभी उसको विग्रह गति में है, निगोद पर्याय शुरू हो गई उसकी, तो उसको क्या कहेंगे, बादर निगोद वर्गणा कहेंगे,
बादर निगोद है ना,
कि प्रत्येक शरीर वर्गणाओं में, अभी शंकाकार स्वयं उसका उत्तर दे रहे हैं, प्रत्येक शरीर वर्गणाओं में तो गर्भित नहीं हो सकते, क्योंकि एक तो निगोद जीवों को प्रत्येक शरीर जीव होने में विरोध है, क्योंकि वो अभी निगोद है तो उसको प्रत्येक शरीर ही नहीं कह सकते। दूसरा पॉइंट, प्रत्येक शरीर वर्गणाएं असंख्यात लोकमात्र प्रमाण को छोड़कर अनंत हो जाएगी। अगर उसको प्रत्येक शरीर वर्गणा कहेंगे बादर निगोद को, तो बादर निगोद जीव विग्रह गति में भी अनंत है, तो प्रत्येक शरीर वर्गणाएं अनंत हो जाएगी उनका कहना है, यानी स्वयं ही उसकी अपनी दलील कर रहा है। इसलिए बादर निगोद वर्गणा वर्तमान काल में अनंत होनी चाहिए। हम कितने कहते हैं, बादर निगोद वर्गणा असंख्यात लोक प्रमाण, और विग्रह गति में जीव अनंत है, इसलिए उनको कहना, उसको प्रत्येक शरीर वर्गणा कहना कि बादर शरीर बादर निगोद वर्गणा कहना, बादर निगोद वर्गणा कहते हो विग्रह गति में तो वो अनंत होनी चाहिए, ये उनका कहना है। कहना समझ में आई बात? हाँ, अभी उसका सिंगल नहीं जाता है, अनंत में जाए तो अनंतों का समूह ही जाएगा। हाँ, ये अभी समाधान में कह रहे, यह कोई दोष नहीं, क्योंकि विग्रह गति में भी एक बंधन में बंधे हुए अनंतानंत बादर निगोद जीवों की एक बादर निगोद वर्गणा बन जाती, यानी विग्रह गति में भी एक बंधन में बंधे हुए अनंतानंत जीव जा रहे हैं।
यहाँ पे बंधे हुए कैसे, यहाँ शरीर नाम कर्म का द्वारा उदय तो नहीं चल रहा है, तो वो बंधन कैसे माना जाएगा, क्योंकि शरीर नाम कर्म का उदय तो
शरीर का कहाँ प्रश्न है, वहाँ तो उनके कारमण है,
तेजस है,
और उनके परमाणु का स्कंद तो है ही, एक जीव तो अकेला जाता नहीं, उसके परमाणु तो है ही नहीं उसके साथ,
तो उसके साथ जो कारमण और तेजस वर्गणा है उसका,
पर वो सारे जीवों का स्कंद है।
अच्छा, वो
एक सिंगल सिंगल जीव अलग अलग नहीं जा रहा है, विग्रह गति में जाते हुए भी अनंतानंतों का जत्था एक साथ जाता है। फिर से देखो,
तो यहाँ से एक दूसरा क्वेश्चन भी आ सकता है, जो देव से मनुष्य में आ रहा है, तो मनुष्य जो विग्रह गति में है देव से आ रहा है, वो प्रत्येक शरीर बिना जाएगा कि बादर निगोद बिना जाएगा,
आप ही बताओ।
ऐसे तो ये बुक के हिसाब से, जो शास्त्र के हिसाब से तो बादर निगोद उसको कहना चाहिए,
वो बादर निगोद है क्या, वो जीव मनुष्य है ना वो,
पर
यहाँ बादर निगोद जीव है, विग्रह गति में विद्यमान बादर निगोद जीव का अर्थ है वो निगोद पर्याय में है,
पर हमने पहले एक बार देखा था ना उसको बादर निगोद ही कहना चाहिए, पर परसों दो तीन दिन पहले बात आई थी मेरे को ऐसे ख्याल है,
उसको कहा बादर निगोद कहा,
सो मनुष्य विग्रह गति में प्रत्येक शरीर हो जाएगा, तो प्रत्येक शरीर उसको ले सकते है, तो जो सपित कर्मांशी के उसके पूज्य तो अयोगी केवली के अंत से बहुत कम हो जाएगी ना, क्योंकि वहाँ पे तो औदारिक शरीर का स्कंद ही नहीं,
औदारिक शरीर तो बहुत स्थूल है, मेजोरिटी तो कारमान की है ना, मेजोरिटी तो कारमान की है ना, और जो वहाँ प्रत्येक शरीर वर्गणाएं जो कितनी होगी उसमें, एट ए टाइम मरने वाली जो ज्यादा नहीं होगी ना, असंख्यात ही हो सकते हैं, प्रत्येक शरीर उसको कहो वो तो असंख्यात ही होगी, अनंत तो नहीं हो जाएगी,
असंख्यात होगी, पर यहाँ पे तो एक जीव की अपेक्षा हम लोग स्थान देखते हैं ना,
निकालो आप,
क्योंकि मेरे को कभी क्वेश्चन हुआ था
जरा,
पर मैंने पूछा नहीं, मैंने भूल की,
प्रश्न है तो देखेंगे हम, आपने कहाँ पढ़ा ना,
आया था दो तीन दिन पहले आया था, मैं भूल गया हूँ। प्रत्येक शरीर वेदना में आया।
अभी जहाँ अभी जैसे विग्रह गति की बात करें ना बादर निगोज जी, ऐसा आया है
विग्रह गति की बात आई थी मेरे को याद है, पर अभी वहाँ पे हमने इसे मैं इसे समझा था कि उनको भी बादर निगोज वर्गड़ा में लेना चाहिए।
वही जो निकाल के देखेंगे हम।
ये जो पेज नंबर 82 में है, विग्रह गति में शरीर नाम कर्म का उदय नहीं होता।
कहाँ 82?
हाँ वहाँ पे शंका है।
एक मिनट, बादर निगोद वर्गणा की बात है ना?
हाँ।
विक्षीन कषाय की बात है
नहीं, ये विग्रह गति की बात है। 82
कहाँ पर? 82 में, 85 पर पढ़ रहे हैं। एक मिनट,
ये शंका में पूछा है।
उसके पहले की पैराग्राफ पढ़ो पहले। देखो पेज नंबर 81 आपका जो प्रश्न चल रहा है ना।
हाँ।
पृथ्वी का एक, जल का एक, तेजस का एक, वायु का एक, देव नारकी आहारक शरीरी प्रमत्त संयत, आहारक शरीरी प्रमत्त संयत, सेवक केवली अयोग के इमली, ये जीव प्रत्येक शरीर वाले होते हैं ये तो मालूम है, क्योंकि इनका निगो जीवों के साथ संबंध नहीं होता। बराबर। विग्रह गति में विद्यमान बादर निगोद जी
नहीं, पर यहाँ पे मनुष्य को उन्होंने ये इसमें नहीं लिया प्रत्येक शरीर में।
देखो देखो यहाँ बादर की बात है। विग्रह गति में विद्यमान बादर निगो जीव और सूक्ष्म निगो जीव प्रत्येक शरीर वाले नहीं होते, वही जो बात अभी कह रहे, क्योंकि निगोद नाम कर्म के उदय के साथ गमन होने के कारण विग्रह गति में भी एक बंदरबद्ध अनंत जीवों का समूह पाया जाता है, क्योंकि उनका शरीर नाम कर्म का उदय नहीं, फिर भी वो निगोद नाम कर्म का उदय भले चल रहा है उनका। तो वहां पर भी विग्रह गति में भी एक बंधन बद्ध चले जाते हैं, क्योंकि हमने एक साथ अनंत जीव उत्पन्न होते हैं तो विग्रह गति से ही वो जाते हैं। यदि विग्रह गति में वर्तमान अशेष जीव,
अशेष पिन सभी मनुष्य को ले सकते हैं ना, ये अशेष में कौन सा जीव लेना, मनुष्य होते?
यदि विग्रह गति में वर्तमान अशेष जीव प्रत्येक शरीर होते ऐसा माना जाए तो प्रत्येक वर्गणा अनंत हो जावे। अनंत तब हो सकती है अगर वो निगोद वाले हो।
निगोद वाले होते,
यानी देखो विग्रह गति में भी एक बंधन बद्ध अनंत जीवों का समूह पाया जाता है, एक बंधन बद्ध नहीं है ऐसे अशेष लेना।
हाँ, तो एक बंधन बद्ध नहीं,
एक बंधन बद्ध नहीं है ऐसे निगोद जीव, ऐसे निगोद जीव,
ऐसे निगोद जीव लेना के मनुष्य
नहीं, तो अनंत अनंत कैसे होगी? बाकी जीव अनंत होते ही नहीं है। अनंत कहने से निगोद को ही लेना पड़ेगा, यानी कितने ही जीव एक बंधन बद्ध निगोद है और कोई छुटे भी निगोद हो सकते हैं, इस तरह से उनको कहना है यहाँ पर। हाँ, इसीलिए वो अशेष में चले जाएंगे, पर वो है तो बादर निगोद ही कहलाएगा।
नहीं, वो तो उनका तो समाधान हो गया।
देखो देखो विग्रह गति में वर्तमान अशेष जीव, अशेष जीव यानी अशेष निगोद जीव प्रत्येक शरीर होते ऐसा माना जाए तो, यानी जो एक बंधन बद्धन नहीं है उनको प्रत्येक शरीर मानो तो प्रत्येक वर्गणाएं अनंत हो जावे।
नहीं, पर ये मनुष्य और तिरियन जो जाएंगे जो ऊपर के, अरे दो इंद्रिय से पद्धे, वो तो असंख्यात ही होते हैं।
वही तो कह रहे हैं, अशेष कहने से अनंत अगर हो जाते हैं तो अनंत क्यों कहेंगे, अगर एक बंधन बद्धन नहीं ऐसे निगोदों को लेंगे तो की बात होगी।
परंतु ऐसा ही नहीं, क्योंकि वे असंख्यात लोग प्रमाण होते हैं।
असंख्यात लोग क्यों ऐसा? अविरुद्ध भाषा आचार्यों के वचनों से जाना जाता है। अभी आगे की शंका जो अपनी 82 पर है, विग्रह गति में शरीर नाम कर्म का उदय नहीं होता, इसलिए वहां न तो प्रत्येक शरीरपना प्राप्त है और न साधारण शरीरपना, इसलिए वे प्रत्येक शरीर बादर और सूक्ष्म निगोद वर्गणाओं में से किन्हीं में भी अंतर्भूत नहीं होती है।
अभी समाधान में
यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि विग्रह गति में बादर और सूक्ष्म निगोद नाम कर्मों का उदय दिखाई देता है, इसलिए वहां पर भी बादर और सूक्ष्म निगोद द्रव्य वर्गणाएं उपलब्ध होती है, यानी वहां पर भी जो उसको नाम कर्म के उदय के कारण वो जो है उसको उस वर्गणा में इंक्लूड करेंगे, बादर निगोद वर्गणा है।
सो जो देव और नारकेश से मनुष्य में उत्पन्न हो रहे हैं उसके विग्रगति में भी उसके पहले समय से उनका उनके साथ वो जीव का स्कंध बन जाएगा निगोद का। ये तो खाली निगोद की बात की, पर वहाँ पे जो देव और नारकी से जो
वहाँ पर भी बादर और इनसे अतिरिक्त, देखो इनसे अतिरिक्त जिन्होंने शरीरों को ग्रहण कर लिया है या नहीं ग्रहण किया है,
ये प्रत्येक
वे सब जीव प्रत्येक शरीर वर्गना वाले होते हैं।
सो जो देव और नारकी से मनुष्य में आते हैं वो विग्रह गति में प्रत्येक शरीर ही हो जाएंगे।
यहाँ एक बंधन बद्ध है जो ये भी ले लिए, क्योंकि वो प्रत्येक शरीर वाले एक अंगारे में उत्पन्न होते उसकी बात यहाँ उन्होंने ले लिए।
पर ये एकदम खुलासा नहीं हो रहा है यहाँ पे,
क्योंकि वो जो जीव आया है ना, एक मनुष्य जीव आया है।
हाँ, जो देव से आया है,
देव से आया
है, जो प्रत्येक शरीर में ऐसा है उसको ही लेते हैं क्योंकि वो प्रत्येक शरीर ही,
पर उसने अभी अवतारी शरीर ही ग्रहण नहीं किया है तो उसके आधार से बादर निगोद हो गए ना बाद में।
हाँ, तो वही मेरा क्वेश्चन है क्योंकि ये जो मनुष्य विग्रह गति में है वो प्रत्येक शरीर ही गिना।
हाँ, जैसे जो निगोद विग्रह गति में उसको बादर निगोद वर्गना में ले लिया है,
बादर निगोद वर्गना में,
बादर जीवों को निगोद, जीवों को बादर निगोद वर्णन।
और मनुष्य को उन्होंने प्रतीक शरीर दे दिया।
हाँ, पर तो बादर निगोद कैसे एक बंधन बद्ध है?
नहीं, मेरा खुलासा नहीं हुआ, ये समाधान नहीं होता है यहाँ पे। ये लिखा ना समाधान में, और इनसे अतिरिक्त जिन्होंने शरीर को ग्रहण कर लिया है या नहीं ग्रहण किया है वे सब जीव प्रतीक शरीर वर्गना वाले होते हैं। सो इनसे अतिरिक्त तो मनुष्य और तिर्यंश में जो देवो नारकी से आते हैं।
नहीं, यहाँ इनके अतिरिक्त ने जो पृथ्वी का एक जल का एक उसकी बात उन्होंने मुख्यता ली देवो नारकियों के लिए। ये जो है ना पृथ्वी का एक है, जल का एक है, अग्नि का एक है, उन्हीं की अपेक्षा असंख्यात लोक प्रमाण सिद्ध हो जाता है।
हाँ, तो मनुष्य और तिर्यंश जो विग्रह गति में है उनको क्या प्रत्येक शरीर में लेना के बादर निकल के लेना, वो खुलासा नहीं हुआ। वो तभी मैं पूछने वाला था, पर मेरे को इस तरह का कुछ आगे आ जाएगा।
बादर निगोद का तो उसके साथ अभी संयोग नहीं हुआ तो कैसे कहेंगे हम, नहीं तो फिर प्रत्येक शरीर का और बादर निगोद का संयोग हुआ ऐसा कहना पड़ेगा।
नहीं, तो मेरा दूसरा क्वेश्चन आ रहा है कि सफेद कर्मों से जो विग्रह गति में मनुष्य गति में है उनका पुंज कम होगा के बारहवे के अंत, अरे चौदहवे के अंत, क्योंकि चौदहवे के अंत में तो
वहाँ तो कर्म भी गया है ना बहुत सारा, वो तो मैंने पहले आपको बता दिया था।
हाँ, वो सब वो गुरुश्री जी निर्जन होकर चला गया है,
अभी यहाँ फिर आएगा कहीं तो देखेंगे, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट रूप से ऐसी बात बताई नहीं है। अभी हम आए हैं यहाँ 138 पेज पर आए थे ना, नहीं 139 पर थे हम, क्योंकि शंकाकार ने शंका पूछ ली थी, उसके समाधान में क्या बताया था उन्होंने, विग्रह गति में भी एक बंधन में बंधे हुए अनंत अनंत बादर निगोद जीवों की एक बादर निगोद वर्गना बन जाती है ना।
हाँ,
उनकी बादर निगोद वर्गना वहीं पर बन गई थी, इसलिए वर्तमान काल में बादर निगोद वर्गनाएं असंख्यात लोक प्रमाण ही होती है, ऐसा ग्रहण करना चाहिए। अब कहते शून्य वर्गनाएं शून्य रूप से अध्रुव भी है, क्योंकि उपरिम और अधस्थन वर्गनाओं के भेद संघात से, ये शून्य कहने से वो ध्रुव शून्य वाली बात नहीं लेनी है, यानी बादर निगोद वर्गना जो अनंत अनंत हमने विकल्प देखे थे उनमें से जो शून्य है, यानी ये जो अभी वर्तमान में जो नहीं है या अभी तक जो नहीं हुए है उसको शून्य कहा, वो कायम शून्य रही नहीं रहेगी, क्योंकि उस विकल्प वाला कोई जीव कभी उपलब्ध हो सकता है, क्योंकि उपरिम और अधस्थन वर्गणाओं के भेद संघात से, ये उपरिम और अधस्तन में तो स्वस्थान में लेना, शून्य वर्गणाएं भी कालांतर में अशून्य रूप होकर उपलब्ध होती है और अशून्य वर्गणाएं अशून्य रूप से अध्रुव है, यानी अभी तक किसी ने वो पाई नहीं, वो हो सकता है कभी किसी को हो जावे, क्योंकि वर्गणाओं का एक रूप से सदा अवस्थान नहीं पाया जाता। वर्गणा देश की अपेक्षा तो सब वर्गणाएं ध्रुव है। वर्गणा देश इन जनरल हम सामान्य से कहेंगे तो बादर निगोद वर्गणा एज इट इज ध्रुव होगी, क्योंकि अनंतानंत वर्गणाएं सर्वदा उपलब्ध होती है। समझ में आई बात ये?
कि अनंतानंत वर्गणाएं सर्वदा उपलब्ध होती है मीन्स
ये नहीं, वो पॉसिबिलिटीज हमेशा ही रहेगी, पॉसिबिलिटी कोई भी हो सकती है ना उसमें से। अब सूक्ष्म निगोद वर्गणा के ऊपर ध्रुव अध्रुव की बात करेंगे। सूक्ष्म निगोद वर्गणाएं शून्य रूप से अध्रुव है, यानी जो है नहीं है वो हो सकती है, क्योंकि शून्य वर्गणाओं का सर्वदा शून्य रूप से ही रहना चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है। शून्य क्यों कहा? अभी तक किसी ने वो पाया नहीं था इसलिए शून्य कहा। यह संभव की अपेक्षा कहा है, परंतु व्यक्ति की अपेक्षा कथन करने पर शून्य वर्गणाएं शून्य रूप से ध्रुव भी है। ध्रुव भी है क्योंकि अभी तक किसी ने नहीं पाया, क्योंकि वर्तमान काल में असंख्यात लोक प्रमाण सूक्ष्म निगोद वर्गणाओं के द्वारा पूरे अतीत काल में भी सब जीवों से अनंत गुणे स्थानों का पूरा करना संभव नहीं है। समझ में आते ना? अतीत काल में भी वो सभी पाए नहीं गए,
पूरी नहीं गई है,
कारण बादर निगोद जीवों के समान कहना चाहिए, जैसे वहां कहा था वही यहाँ पर होता है। वे अध्रुव भी है क्योंकि वो पॉसिबिलिटी बताई, वो तो कभी भी वो जो शून्य रूप से अभी तक शून्य रूप से है वो कभी अशून्य ने वो तो विद्यमान हो भी सकती है, क्योंकि उपरिम और अधस्थन वर्गणाओं के भेद संघात से उपरिम अधस्थन ने स्वस्थान में ही लेना है। भेद संघात और स्वस्थान में हमने
देखा था,
स्वीकार किया है इसमें।
सूक्ष्म निगोद
शून्य वर्गणाएं भी कालांतर में अन्य काल में अशून्य रूप होकर उपलब्ध होती है। उपलब्ध होती ने अभी तक अनादि काल से आज तक की बात करनी है। अशून्य सूक्ष्म निगोद वर्गणाएं अशून्य जो विद्यमान है वो अशून्य रूप से अध्रुव है, वो कायम वो होगी ही ऐसा भी नहीं है, क्योंकि सूक्ष्म निगोद वर्गणाओं का अवस्थित रूप से अवस्थान नहीं पाया जाता, यानी कायम उतना का उतना प्रमाण वाले ही वर्गणा हो ये कोई नियम नहीं है। अब 140 पेज पर आते हैं। शून्य रूप महास्कंद द्रव्य वर्गणाए, वो गाये हुआ है वर्गणाए, शून्य रूप से अध्रुव है। शून्य रूप से नहीं, उसका अभी विद्यमान नहीं है, परंतु वो कभी भी विद्यमान हो सकती है, क्योंकि उसमें विकल्प हमने कितने देखे थे?
अनंत देखे थे, नहीं नहीं
अनंत नहीं थे, कुछ असंख्यात वे भाग थे। जगन्य से उत्कृष्ट कितना
नहीं,
पर ना होती तो एट अ टाइम एक ही,
तो बाकी तो सब शून्य हो जाएगी।
यानी अभी तक कितने विकल्प हुए होंगे, जितने अतीत काल के समय उतने होंगे, उसमें भी रिपीटेड भी हुए होंगे ना कितने, हाँ, तो देखो यहाँ कहते यहीं पर पढ़ेंगे। यानी जो शून्य रूप से अध्रुव है, क्योंकि वो शून्य रूप से हमेशा नहीं रहेगी। सेकंड लाइन, यह संभव की अपेक्षा निर्देश किया है, परंतु व्यक्ति की अपेक्षा कथन करने पर शून्य वर्गणाएं ध्रुव भी है, क्योंकि अतीत काल में अभी तक वो इतनी प्रमाण वाली वर्गणा न हुई हो ये बहुत हो सकती है, क्योंकि अतीत काल के प्रत्येक समय में एक एक महास्कंद स्थान के उत्पन्न होने पर भी सब अतीत काल में अतीत काल मात्र ही अशून्य स्थान प्राप्त होकर, जितने अतीत काल के समय है उतने अशून्य थे, यानी उसकी में वो वर्गणाएं पाई गई कभी न कभी, शेष सब जीवन से अनंत गुणे, यानी कितने हमने टोटल स्थान देखे थे, सब जीवन से अनंत गुणे, सेचीय स्थान होते, पॉसिबल स्थान, यानी पॉसिबिलिटी की अपेक्षा अपने देखे, क्योंकि उनका शून्य रूप से अवस्थान पाया जाता है। वे अध्रुव भी है, क्योंकि जो अभी तक नहीं पाए जाए कभी वो हो सकता है, विद्यमान हो सकते हैं, क्योंकि भेद संघात के द्वारा किसी भी काल में शून्य वर्गणाएं भी अशून्य रूप होकर उपलब्ध होती है। अब जो अशून्य वर्गणाएं, अशून्य यानी जो विद्यमान कभी न कभी हुई थी, वे अशून्य रूप से अध्रुव है, क्योंकि अशून्य रूप कहने से वर्तमान में जो है उसकी बात करेंगे, क्योंकि महास्कंद वर्गणाओं का सर्वदा एक रूप से अवस्थान नहीं पाया जाता, यानी हर समय उसमें परमाणुओं की हिनाधिकता होती रहती है। इसी प्रकार नाना श्रेणी ध्रुव ध्रुव अनुगम का भी कथन करना चाहिए, क्योंकि इसमें इससे उसमें कोई विशेषता नहीं है। नाना श्रेणी का अर्थ वो कितने होती है एट ए टाइम, उसकी बात है। इस तीन काल के समय अनंत गुण है, पर अतीत काल से अनंत काल के समय अनंत अनंत गुण है। अतीत काल के समय जीव के अनंत विभाग से असंख्यात गुण है। नहीं समझे,
अतीत काल के समय
कितने गए?
अनंत गए, पर वो कितना प्रमाण आपने जो बताया,
बताओ
जीव राशि से अनंत।
देखो सिद्ध से असंख्यात गुणा होगा कि नहीं?
हाँ सिद्ध से,
क्योंकि छह सौ आठ सिद्ध होते हैं तो छह महीने लगते हैं, छह महीने करो ना
असंख्यात,
तो छह महीने के असंख्यात समय होंगे। तो छह सौ आठ के लिए इतने,
छह सौ आठ
तो एक के लिए कितने समय हमने निकाला था? नौ घंटे कुछ निकाला था, नौ घंटे कुछ निकाला था ना हमने। ये नौ घंटे कहो या असंख्यात समय कहो एक ही बात है ना। तो एक सिद्ध के लिए असंख्यात, तो अनंत सिद्धों के लिए उससे असंख्यात गुण है, यानी सिद्ध राशि मल्टीप्लाइड बाय असंख्यात। पर वो सारा टोटल जो जीवों का अनंत वा भाग है, और यहाँ विकल्प कितने हैं? जीवों से भी अनंत अनंत गुण है।
वैसे तो तीन काल के समय, तो
तीन काल के नहीं बता रहे,
नहीं तीन काल के समय पुद्गल राशि से अनंत नहीं।
हाँ जीव से पुद्गल अनंत अनंत गुना, और पुद्गल से तीन काल के समय अनंत गुण।
हाँ
यहाँ तो भूतकाल की बात चल रही है। अब ये अभी कौन सा है, शांतर निरंतर अनुगम, वो 53 में हमने देखा था ना, ध्रुव ध्रुव हो गया वो वर्गणा शांतर निरंतर अनुगम
चौथा।
हाँ चौथा नंबर का पॉइंट, एक श्रेणी वर्गणा शांतर निरंतर अनुगम की अपेक्षा परमाणु पुद्गल द्रव्य वर्गणा से लेकर ध्रुवस्कंद वर्गणा तक, यानी चौदहवीं वर्गणा तक क्या शांतर है, शांतर है क्या, निरंतर है या क्या शांतर निरंतर है? तो कहते निरंतर है, यानी वो सारे वर्गणा स्थान निरंतर है, एक एक प्रदेश से बढ़ते हुए सभी। तो कहते कि निरंतर है क्योंकि अंतर के बिना मुक्ता फलों की पंक्ति के समान वे अवस्थित है, यानी एक एक परमाणु के डिफरेंस से जो एक एक स्थान बताए वो हमेशा ही पाए जाएंगे। अचित्त अध्रुव स्कंद द्रव्य वर्गणाएं क्या शांतर है क्या निरंतर है या क्या शांतर निरंतर है?
अचित्त
अध्रुव स्कंद, अध्रुव स्कंद वर्गणा लिख, जो शांत निरंतर को ही बताया होगा उसका नाम।
ये शांत निरंतर वर्गणा की बात है ना, अचित्त अध्रुव स्कंद,
अचित्त अध्रुव स्कंद द्रव्य वर्गणा, द्रव्य वर्गणा ये बताए एक नहीं, फिर से अचित्त अध्रुव स्कंद द्रव्य वर्गणा क्या क्या शांतर है क्या निरंतर है या क्या शांतर निरंतर है,
ये तेरहवीं वर्ण का बात चल रही है ना,
पूरा सुनते हैं पहले। शांतर निरंतर है क्योंकि कहीं पर निरंतर रूप से और कहीं पर शांतर रूप से वे वर्गणाएं उपलब्ध होती है। पुनः उस शांतर निरंतर वर्गणा की आचार्यों के विरोध रहित उपदेश के बल से यह प्ररूपणा करते हैं यथा, यानी यह शांतर निरंतर वर्गणा की बात है।
हाँ।
उसको अचित्त अध्रुव स्कंद द्रव्य वर्गणा बताया अभी 141 पेज पर। उनमें जिन वर्गणाओं के दोनों ही पार्श्व भागों में शून्य वर्गणाएं हैं और मध्य में एक ही वर्गणा अशून्य रूप है, उनकी स्थापित की गई शलाकाएं स्तोक है।
जो अशून्य रूप है वो स्तोक है।
क्या कहना चाहते हैं? अभी वो शून्य अशून्य में भी कैसे हो गए
कि जिन के बीच में ना,
हाँ दो शून्य, मध्य में एक ही वर्गणा है, एक ही वर्गणा है, पर्टिकुलर
एक
प्रमाण है,
एक प्रमाण
है, पर्टिकुलर प्रमाण है। हम मान लेते हैं ना 2000 वाली है ये, 2000 इसकी परमाणु की संख्या 2000 है, ये विद्यमान है यानी अशून्य है, और ये 2001 2002 से लेकर कुछ है ही नहीं और यहाँ नीचे भी कुछ है ही नहीं,
2002
यानी जिसमें बीच में एक ही परमाणु, एक पर्टिकुलर संख्या वाला एक ही वर्गणा है,
एक
ही वर्गणा है, एक ही स्थान है। मान लेते हैं 2000 वाला एक है और ऊपर कहीं जाके मान लेते 5000 वाला है, बीच में ऐसे भी हो सकते कि यहाँ दो तीन स्थान है उसके बाकी,
ये तो एक एक ही खाली अभी एक ही स्थान ले रहे हैं जिसके आगे पीछे अशून्य
है, फिर दो दो स्थान लेंगे इसके आगे पीछे अशून्य है, शून्य है नहीं है,
शून्य है,
ऐसे तीन स्थान लगातार है दोनों बाजू में शून्य है ऐसे वो बता रहे हैं। अब इसकी बात देखते देखो कि जिन वर्गणाओं के दोनों ही पार्श्व भागों में ऊपर नीचे की बात हम कहेंगे शून्य वर्गणाएं हैं और मध्य में एक ही वर्गणा अशून्य रूप में विद्यमान है, उनकी स्थापित की गई शलाकाएं स्तोक है, ऐसी टोटल में कितनी है जो सिंगल सिंगल ही जो दोनों बाजू शून्य और बीच में एक ही स्थान है, ऐसी सबसे कम है। जिन वर्गणाओं के दोनों पार्श्व भागों में शून्य वर्गणाएं हैं और मध्य में निरंतर दो दो अशून्य वर्गणाएं हैं, उनकी स्थापित की गई शलाकाएं अनंत गुणीय ऊपर। फिर से अभी ऐसे कोई स्थान होगे, यहाँ तो हमने 2000 के दोनों बाजू शून्य है ऐसा लिया,
तो निरंतर
ऐसे कोई होगे, हम मान लेते ना कि 3001 और 3002 ये अशून्य है और उनके दोनों बाजू में शून्य है, यानी निरंतर के नहीं, हाँ केवल एक 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 वाले हो गए वो कुछ स्थान है, निरंतर दो ही स्थान विद्यमान है बाकी शून्य शून्य है, वो उनसे अनंत गुणे हैं, तो टोटल कितने होने
अनंत हो गए ना, रिकॉर्डिंग है,
हाँ रिकॉर्डिंग नहीं हो रही,
आपका फोटो चला गया है अभी, ये दिनेश
क्या हो रहा है,
कुछ राइटिंग आ गया है,
वो जाएगा राइटिंग,
नहीं दिनेश भाई चेंज करते
हैं, हाँ लेटर करा, रिज्यूम
हाँ,
पहले कौन से सिंगल सिंगल वाले लिए, बाद में निरंतर दो दो स्थान वाले हैं जो विद्यमान है दोनों ओर शून्य है, वो अनंत गुणे हैं। जिन वर्गणाओं के दोनों ही पार्श्व भागों में शून्य वर्गणाएं और मध्य में निरंतर तीन तीन अशून्य वर्गणाएं हैं, हाँ एक वाले दो वाले तीन वाले, एक से दो वाले अनंत गुणे हैं, दो से तीन वाले अनंत गुणे हैं, इस प्रकार चार चार पांच पांच छ छ सात सात आठ आठ नौ नौ दस दस, फिर कहते संख्या संख्या, यानी एक एक से बढ़ते हुए बढ़ाना है, असंख्यात असंख्यात जो निरंतर वर्गणाएं हैं उनकी अलग अलग स्थापित की गई शलाकाएं अनंतर अधस्तन शलाकाओं से पृथक पृथक अनंत गुणी है, यानी एक से दो अनंत गुणी, दो से तीन अनंत गुणी, तीन से चार अनंत गुणी, चार से पांच अनंत गुणी, अभी सात सात आठ आठ दस दस सबको उत्कृष्ट संख्या तक एक एक को बढ़ाते जाना, यानी वो कितने अनंत अनंत हो गए टोटल की बात करते हैं,
संख्या तक लेके गए असंख्या तक असंख्या जो भी
देखो असंख्यात असंख्यात तक गए ना। अब अनंतर दोनों पार्श्व भागों में शून्य वर्गणाएं होकर मध्य में जो निरंतर अनंत वर्गणाएं हैं उनकी स्थापित की गई शलाकाएं अनंत गुणी है। इसी प्रकार अनंतानंत वर्गणाओं की स्थापित की गई शलाकाएं अनंतर अधस्तन अधस्तन शलाकाओं से अनंत गुणित क्रम से अनंतर स्थान को जाती है। समझ में आती है ना बात, एक से दो अनंत गुणे दो से तीन को कितने अनंत हो जाएंगे। तदनंतर उपरिम अनंत वर्गणाओं की दोनों दिशाओं में शून्य वर्गणाओं की स्थापित की गई शलाकाएं अनंतर अधस्तन अधस्तन शलाकाओं से, अब देखो अभी असंख्यात गुणी हो, पहले तो अनंत गुणी होकर जाती थी, अब उससे भी अनंत गुणे परमाणु बढ़े तो दोनों और असंख्य तो उनका स्थान असंख्यात गुणी होकर अनंत स्थानों के व्यतीत होने तक जाती है।
अनंत स्थान तक ये क्रम,
हाँ अनंत स्थानों तक ये, यानी अभी एक एक परमाणु से बढ़ाते हैं ना, वो असंख्यात गुणी। तदनंतर आगे स्थापित की गई शलाकाएं संख्यात गुणी होकर अन्य अनंत स्थानों के व्यतीत होने तक जाती है। उससे आगे अन्य अनंत स्थानों के व्यतीत होने तक संख्यात भाग अधिक होकर निरंतर शलाकाएं जाती है। उससे आगे अनंत स्थानों के व्यतीत होने तक असंख्यात वे भाग अधिक होकर निरंतर शलाकाएं जाती हैं। उससे आगे अनंत स्थानों के जाने तक अनंत वे भाग अधिक होकर निरंतर जाती है। उससे आगे अन्य अनंत अध्वान के व्यतीत होने तक 142 पेज, यहाँ क्या कहना चाहते उसको जरा फिर से देखते हैं। ये सांतर निरंतर मार्गणा की बात चल रही है। पहले में पहले बताया था कि ये किसकी बात है, निरंतर है कि नहीं है, ये एक प्रदेशी हमेशा पाए जाएंगे निरंतर है, दो प्रदेशी हमेशा, तीन प्रदेशी हमेशा, हमने नीचे से ध्रुव स्कंध तक तो हमेशा ही सभी स्थान हमेशा पाए जाएंगे, यहाँ तक देखा। सांतर निरंतर स्थान में क्या बता रहे अभी, सांतर निरंतर का अर्थ क्या होता है कि कुछ स्थान कभी विद्यमान है यानी अशून्य है और बाकी शून्य है, तो एक सिंगल परमाणु बीच में विद्यमान वाला है, यानी ये वर्गणा कहेंगे, परमाणु नहीं कहेंगे, पर्टिकुलर संख्या हमने 2000 मानी थी, तो उसके दोनों बाजू शून्य स्थान है, कहीं ना कहीं केवल एक 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 वाली वर्गणा कहीं कहीं बीच पड़ी, उसके दोनों ओर शून्य स्थान है, ऐसी कितनी है तो सबसे कम है, फिर भी वो अनंत होगी। कहीं कहीं क्या होगा, बीच में दो स्थान निरंतर है और दोनों ओर शून्य है, तो जो एक वाले है उससे भी ये दो वाले जो स्थान है वो अनंत गुण है, दो वालों से जहाँ तीन निरंतर है वो स्थान अनंत गुण है, जहाँ चार निरंतर है दोनों बाजू शून्य है वो उससे अनंत गुणा है, ऐसे करते कहते जहाँ संख्यात निरंतर स्थान है दो बाजू शून्य है वो उससे भी अनंत गुण है, जहाँ बीच वाले स्थान अनंत असंख्यात है दोनों बाजू शून्य है वो उससे भी अनंत गुण है, ऐसे करते करते बीच में अनंत स्थान कंटिन्यूएशन में है दोनों ओर शून्य है वो उनसे भी अनंत गुण है, ऐसे अनंत से में भी अनंत अनंत तक ऐसे ही बात है। फिर उसके आगे और बीच वाला अनंत का प्रमाण बढ़ा, निरंतर स्थान अनंत अनंत परमाणुओं का है, दोनों बाजू शून्य है वो असंख्यात गुणे है, एक एक परमाणु के बढ़ते हुए स्थान ऐसे असंख्यात गुणे असंख्यात गुणे, उसके बाद संख्यात गुणे, फिर उससे संख्यात वे भाग अधिक असंख्यात वे भाग अधिक
अनंत,
फिर आगे बढ़ते हुए जो स्थान है दोनों ओर शून्य है
अनंत,
फिर वे अनंत वे भाग अधिक, इस तरह से हमने अभी तक देखा अनंत वे भाग अधिक तक। ये चार लाइन हो गई 142 पेज पर लास्ट में, उससे आगे अन्य अनंत अध्वान के व्यतीत होने तक, अन्य अनंत अध्वान ने एक एक परमाणु से बढ़ते हुए अन्य स्थान, अनंत स्थान, अध्वान ने उसके स्थान, अनंत वे भागहीन, अनंत वे भागहीन होकर, पहले अनंत वे भाग अधिक थे, अभी उल्टे क्रम से जा रहे। पहले अनंत वे भाग अधिक होते ना, अभी अनंत वे भागहीन होकर निरंतर जाती है। उससे आगे अन्य अनंत अध्वान के व्यतीत होने तक, यानी एक परमाणु बढ़ा, एक परमाणु से बढ़कर स्थान, दो परमाणु से बढ़कर स्थान, ऐसे अनंत जाने तक, असंख्यात वे भागहीन, असंख्यात वे भागहीन होकर निरंतर जाती है। यानी इतने बड़े जहाँ है और दोनों ओर शून्य है, अभी इनका प्रमाण कम होता जा रहा है। उससे आगे अन्य अनंत अध्वान के व्यतीत होने तक संख्यात वे भागहीन, संख्यात वे भागहीन होकर निरंतर जाती है। उससे आगे अन्य अनंत अध्वान के व्यतीत होने तक संख्यात गुणीहीन, संख्यात गुणीहीन होकर निरंतर जाती है। यानी एक से दूसरा संख्यात गुणाहीन, दूसरे से तीसरा संख्यात गुणाहीन, इस तरह से। उससे आगे अन्य अनंत अध्वान के व्यतीत होने तक असंख्यात गुणीहीन, असंख्यात गुणीहीन होकर निरंतर जाती है। उससे आगे अन्य अनंत अध्वान के व्यतीत होने तक अनंत गुणीहीन, अनंत गुणीहीन होकर निरंतर जाती है। इस प्रकार एकादि एकोत्तर, एकादि एकोत्तर यानी एक से लेकर एक एक से बढ़ते हुए अशून्य वर्गणाओं के उभय पार्श्वों में, अशून्य ने जो विद्यमान वर्गणा है, उभय पार्श्व ने ऊपर नीचे की दोनों ओर, शून्य वर्गणाओं की जो स्थापित की गई शलाकाएं हैं, वे छह प्रकार की वृद्धि और छह प्रकार की हानि के द्वारा अवस्थान करती है, ऐसा अर्थ यहाँ ग्रहण करना चाहिए। यव के, देखो अनंत गुणा, अनंत गुणा, अनंत गुणा होती है।
पीछे अनंत,
अनंत गुणा हुआ,
तो
अनंत अनंत स्थान जाने पर अनंत गुणा हुआ, फिर असंख्यात गुणा हुआ, फिर संख्यात गुणा हुआ।
तो यव मध्य,
यव मध्य अलग होता है, यव मध्य में
नहीं, पीछे
नहीं, बाद में कम हुई ना,
बाद में कम होती जाती है ना संख्यात भाग पीछे, इसीलिए मैंने पूछा, खाली मेरे क्लैरिटी के लिए। हाँ,
क्योंकि
यव मध्य
बहुत ही, क्योंकि अनंत गुणा, अनंत गुणा हुआ, फिर असंख्यात, फिर वो इस तरह से कैसा बढ़ेगा? इन्हें पहले अनंत गुणा बढ़ा, फिर असंख्यात गुणा, फिर संख्यात गुणा ही बढ़ा, फिर
संख्यात वा भाग बढ़ा, पीछे असंख्यात
अनंत वा भाग बढ़ा,
तो पहले बढ़ता गया,
फिर अनंत अनंत वा भाग हानि होते गया। भव्यों के योग्य जो प्रत्येक शरीर स्कंद द्रव्य वर्गणाए संयोग्य और अयोग्य गुणस्थान में लभ्यमान है, वे सांतर ही है। यानी जो हमने देखे संयोगी अयोग्य में, जो विकल्प कितने देखे हमने, तो जीवों के अनंत गुणे, और वो जीव तो थोड़े ही है, क्योंकि सब जीवों से अनंत गुणे केवली प्रायोग्य स्थानों में संख्यात केवलियों के निरंतर रहने में विरोध है। इसलिए वर्तमान काल में विवक्षित स्थान सांतर ही है, क्योंकि थोड़े ही जीव होगी ना। अतीत काल में भी, अब अतीत काल में जो केवली हो गए उसकी बात अगर करेंगे, तो भी केवलियों के द्वारा स्पर्श किए गए, यानी जिसको कभी ना कभी वो विद्यमान थी उतनी वर्गणा, प्रत्येक शरीर वर्गणा स्थान सांतर ही है, क्योंकि कभी न कभी किसी न किसी जीव के इतने परमाणुओं का वो समूह था, वो स्थान भी सांतर ही कहलाएंगे, क्योंकि सब जीवों से अनंत गुणे केवली प्रायोग्य प्रत्येक शरीर स्थानों में, ये टोटल जो पॉसिबिलिटीज कितनी थी, सब जीवों से अनंत गुणे, ऐसे टोटल स्थानों में मात्र सिद्धों से असंख्यात गुणा स्थानों का स्पर्श उपलब्ध होता है। समझ में आई बात?
अतीत
सिद्धों से असंख्यात गुना स्थान है ने अतीत काल के समय समझ में आई बात ये अतीत काल के समय कितने हैं देखो यहाँ क्या कहते हैं टोटल पॉसिबिलिटीज कितने हैं सब जीवों से अनंत गुणे एक एक परमाणु के वृद्धि से और अभी तक जो केवली हो गए हैं तो अभी तक प्रत्येक समय अगर लेते हैं तो कितने समय बीत गए हैं अतीत काल जो बीत गया है अनादि से आज तक अनंत काल उसका प्रमाण कितना है
असंख्यात सिद्ध
तो कहते एक सिद्ध होने के लिए हमने देखा था 9 घंटे लगते असंख्यात समय यानी क्योंकि 608 के लिए 6 महीने तो एक जीव के लिए कितने तो अभी तक कितने जीव सिद्ध हो चुके हैं तो अनंत तो वो सिद्ध राशि जो है वो सिद्ध राशि से असंख्यात गुणे काल ही बीत गया है जो सब जीवों का अनंतमा भाग है और हमने विकल्प कितने देखे सब जीवों से अनंत अनंत गुणे यानी अनंत अनंत स्थान ऐसे है कि जो किसी ने भी नहीं पाया ये था यहाँ लिखते हैं देखो एक सिद्ध के यदि पूर्व कोटि मात्र प्रत्येक शरीर स्थान उपलब्ध होते हैं अच्छा एक जीव के इतने लिए हैं क्योंकि जब से वो संयोग अवस्था पाई है तब से उसने सभी स्थान लिए उन्होंने प्रत्येक शरीर वाले
पूर्व कोटि में कुछ कम लेना पड़ेगा
वो कुछ का वो तो ठीक है ना तो सब सिद्धों के कितने प्राप्त हो गए तो पूर्व कोटि के समय कितने हो गए तो असंख्यात ही हो गए इस प्रकार फलगुणित इच्छा में प्रमाण का भाग देने पर सिद्धों से असंख्यात गुणे स्थान ही जीवों के द्वारा स्पर्श किए गए पाए जाते हैं पर यह भी नहीं है क्योंकि एक तो सबके एक पूर्व कोटि प्रमाण आयु नहीं पाए जाते दूसरे सब जीवों के अपुनरुक्त स्थान ही होते ऐसा कोई नियम नहीं है यानी वो क्या कहना चाहते हैं वो जब तक उसने केवल ज्ञान प्राप्त किया है 13वें गुणस्थान और 14वें गुणस्थान के एक एक समय की बात उन्होंने दी है और कहते कि अनेक जीवों के तो समान ही स्थान हो सकते हैं ना इसलिए पुनरुक्त स्थानों को दो बार नहीं गिनना है हमको इसलिए उसके भी कम हो जाएंगे
सर यहाँ पे शून्य स्थान बता रहे हैं तो 8 साल के पश्चात जो हम लोग पूर्व कोटि लेंगे वो प्रत्येक शरीर के स्थान हो जाएंगे
और उसी को लिया ना पूर्व कोटि पूरा लिया 8 साल भी नहीं कम कर दिया गिनने के लिए सब पूर्व कोटि लिया है
नहीं मेरे को क्या इसे मेरे को विचार है कि पूर्व कोटि में कुछ कम उतने स्थान एक जीव के
यही तो कह रहे हैं
तो
अभी कुछ कम भी नहीं किया उन्होंने पूरे पूर्व कोटि गिनकर आपको गणित बताई
तो मैं क्या पूछ रहा हूँ
उसके समय कितने हैं
असंख्यात
हाँ तो असंख्यात किया ना सिद्ध को असंख्यात गुना कर दिया जो जो सिद्ध हो गए वो सहयोगी और अयोगी के एक एक समय बिता कर गए हैं तो कहते हैं सभी तो पूर्व कोटि वाले जीव नहीं है ये भी लिया उन्होंने ख्याल में अभी क्या प्रश्न है बोलो
नहीं नहीं मेरी गर्भ
यानी उन्होंने मैक्सिमम लेके भी काउंट कर दिया परंतु उसमें पुनरुक्त स्थान कितने होंगे अभी जो कुछ बड़ी अवगाहना वाले वहां से हमेशा बड़ी अवगाहना वाले जाते होंगे वहां भले वो शरीर के परमाणु में ही ना दिखता होगी पर पुनरुक्त स्थान भी बहुत होगी कि नहीं होगे कहते दृश्यमान ने वर्तमान काल में भी सांतर है ये तो नेचुरल है ना दृश्यमान काल किसे कहते हैं समाधान यह अर्थात वर्तमान काल को दृश्यमान काल कहते हैं ये शंका इसमें वर्गणाएं सांतर कैसे कही जाती है समाधान सर्वदा अतीत काल सब जीव राशि के अनंत विभाग प्रमाण रहता है क्या कहते हैं सर्वदा ने कभी भी काउंट करो आज के बाद अनंत काल जाएगा तो भी हमेशा अतीत काल सब जीव राशि के अनंत विभाग प्रमाण रहता है हमने देखा था ना कि अतीत काल कितना है तो सिद्धों से असंख्यात गुना है जो सब जीव राशि का अनंत अभाव है अन्यथा सब जीवों के अभाव होने का प्रसंग आता है अन्यथा सब जीवों के अभाव ने सभी जीव मोक्ष चले जाएंगे ये भी ऐसा नहीं मानेंगे तो ये आपके प्रश्न का उत्तर वहाँ आगे के पेज पर आने वाला है, प्रत्येक शरीर वाला। ये कल ही पढ़ेंगे क्योंकि फास्ट फास्ट पढ़ने में कुछ समझ में नहीं आएगा। नीचे का पैराग्राफ हम कल पढ़ेंगे। हाँ, जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तकनम सदा देत हो।
नमोरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्यणम नमो वर्धनम नमो लोय सबस्तावणम नमो।